हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद षष्ठम अध्याय श्लोक संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए कृपा की आवश्यकता है, तो हृदय से समस्त भौतिक इच्छाओं और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करते हैं, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरधारुण बिम्बफल दरोष्ठात् पुलिन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणीन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवे वेदे साङ्गपत् कमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदु सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यम् नमामि भक्तशक्तिकं वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंध षष्ठो अध्याय। इसका शीर्षक है नारद तथा व्यासदेव का संवाद। हमने देखा कि पिछले श्लोकों में वेदव्यास जी नारद मुनि से चार प्रश्न पूछते हैं और उनसे श्लोक नंबर 2 में कहा भिक्षुर्भिः विप्रवसते विज्ञानादेष्टृभिस्तव वर्तमानो वयस्याधि ततः किम करोत् भवान्। कि आपके पास जो महामुनि जन आए थे जब वो विप्रवसते जब दूसरी जगह पर चले गए तो आपने क्या किया, मतलब उनके जाने के बाद इस जन्म, क्योंकि उन्होंने जो आपको ज्ञान दिया था वो तो इस उस जन्म में नहीं दिया था, पहले वाले जन्म में दिया था, तो वर्तमान वयस्यादि ततः किम करोत् भवान्। फिर उस वक्त आपने क्या किया जब वो चले गए थे। और ये पहला प्रश्न कि जब आए थे 4 महीने के लिए और फिर चले गए तो फिर आपने क्या किया। फिर तीसरे श्लोक में दूसरे 2 प्रश्न पूछे हैं स्वयं भुव कया कया वृत्या वर्तितं ते परं वय कथं चेदं पुरस्साक्षी काले प्राप्ते कलेवरं। स्वयं भुव कया वृत्या वर्तते ते परं वयम्। कि हे ब्रह्मा के पुत्र स्वयं भुव, कि आज तो आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो लेकिन उस समय आपने जीवन कैसे बिताया। कि वृत्या वर्तते ते परम वयम्, जीवन कैसे बिताया और आगे कथम चेदम उदास राक्षी काले प्राप्ते कलेवरम। और उस जीवन को खत्म, मतलब जब जीवन का एंड हुआ और उसके बाद आपने देह को कैसे त्यागा, यानी कि ये वाली देह को आपने कैसे प्राप्त किया, त्याग कर अपने यह शरीर को कैसे प्राप्त किया। यानी पहले पूछा कि उनके फौरन जाने के बाद आपने किया क्या किया और वो चले गए फिर जीवन कैसे बिताया और फिर आपने ये वाली देह को कैसे प्राप्त किया। और बहुत ही सुंदर 4 श्लोक में पूछा प्राकल्प विषयामेता स्मृतिं ते मुनि सत्तमा नहि शिव्यवधात् काल एष सर्वा निराकृत। कि जब काल मतलब समय बीतता है तो जीव की स्मृति तो नष्ट हो जाती है, फिर आपने अपनी इस स्मृति को इस काल से कोई मतलब अप्रभावित हुई जैसे का तैसे कैसे बनाए रखा, एज इट इज आपको सब कुछ कैसे याद है। तो आज नारद मुनि उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। नारद उवाच भिक्षुर्भिः विप्रवसते विज्ञानादेष्टृभिर्मम वर्तमानो वयस्याधि तत एतदकारशम्। नारद उवाच, नारद ने कहा भिक्षुर्भिः विप्रवसते, मुनियों के द्वारा विप्रवसते यानी कि दूसरी जगह पर जब वो चले गए विज्ञानादि, विज्ञान का मतलब होता है व्यावहारिक आध्यात्मिक ज्ञान, आदेष्ट भी यानी जिन्होंने मुझे प्रदान किया था, मम मेरा वर्तमान वर्तमान वयस्यादि यानी कि इस जीवन के पूर्व ततः एतद् अकार्षम यानी फिर जो उन्होंने मुझे ज्ञान ततः मतलब तत्पश्चात एतद् मतलब इतना अकार्षम का मतलब होता है संपन्न किया। अनुवाद देखिए श्री नारद ने कहा जिन ऋषियों ने मुझे आध्यात्म का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया था वे अन्य स्थानों को चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पूर्व जन्म में जब नारद को महर्षियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। यद्यपि वे अभी 5 वर्ष के बालक थे, प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला यह महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। इस आध्यात्म में इस अध्याय में बताया गया है कि नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह क्रमशः कैसे घटा। अत्यंत सुंदर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। वास्तव में भक्तों, नारद मुनि को जब वो महामुनि जो आए थे उनके यहाँ पर, उन्होंने कृपा करके आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था। कृपा क्यों की थी, जैसे हमने पढ़ा पहले, क्योंकि नारद मुनि के अंदर वो क्वालिटीज थी। क्या क्वालिटीज थी? कि वो श्रद्धा से सुनते थे, विनम्रता से उनकी आज्ञा का पालन करते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता 4.34 में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यदि आप किसी शुद्ध भक्त के पास जाओगे और उनकी सेवा करोगे विनम्र भाव से, तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनः, वही तब ही वो आपको उपदेश देंगे। आज हम देखते हैं करोड़ों करोड़ों लोग जाते हैं सत्संगों में, अपने जूते घिस जाते हैं उनके, लेकिन उनके अंदर आध्यात्मिक उन्नति नहीं आती। क्योंकि वो क्यों जा रहे हैं? या तो वो टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं, या फिर सीखने के लिए जा रहे हैं कि मुझे ज्ञान मेरे अंदर भी, मुझे भी पता चले कि क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर सेवा भाव नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर समर्पण नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होगा। आध्यात्म टिका हुआ है श्रद्धा पर। जैसे गंगा मैया सबको पावन करने वाली है, शास्त्र कहता है कि गंगा के अंदर यदि आप स्नान करते हो तो आपके समस्त अपराधों का क्षय हो जाता है। लेकिन वहां पर जाकर आपको कितना लाभ होगा वो केवल और केवल आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। बेशक आप पवित्र स्थान पर गए हो, आपने वहां पर जाकर यदि स्नान किया है तो लाभ तो होगा, लेकिन कितना लाभ होता है वो आपकी टोटल श्रद्धा के ऊपर है। कितना आप उसके ऊपर श्रद्धा रखते हो, कितना आपको जो बताया गया है कि उसके अंदर इतना पावर है कि मनुष्य के आवागमन को छूट जाता है, या फिर जितना भी जितना आज तक आपने सुना है यदि है, या फिर कुछ लोग बस तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, बस ये नहीं सोचते कि हाँ कितना मेरे जीवन का कल्याण होगा। वो प्रेम वो भाव का जब तक हम साधु संग नहीं करते ना, वास्तव में कानों से सुनना और हृदय से सुनना दो अलग अलग बातें हैं। जब हम केवल कानों से श्रवण करते हैं तो बस कान ही तृप्त होते हैं, लेकिन जब हृदय से श्रवण किया जाता है तो हमारी आत्मा तृप्त हो जाती, क्योंकि आत्मा कान में नहीं रहती, आत्मा हृदय के अंदर रहती है। तो जब तक आवाज हृदय तक, और हृदय तक कब जाएगी? जब आपको उसके ऊपर श्रद्धा होगी जो बोल रहा है। जैसे अभी हम श्री प्रभुपाद जी से सुन रहे हैं, तो जब हमें श्री प्रभुपाद जी के ऊपर श्रद्धा है, इस भागवत शास्त्र के ऊपर श्रद्धा है, और इस बात पे भी श्रद्धा है कि जो बोल रहा है वो एज इट इज बोल रहा है, तब हमारे अंदर वो प्रेम आध्यात्मिक जो प्रेम है वो श्रद्धा भाव विकसित होती है। लेकिन यदि श्रद्धा नहीं है कि ठीक है मैंने कभी भागवत सुनना नहीं है तो सुन लेती हूँ, है ना, श्रद्धा नहीं है कि इसी से मेरा कल्याण होगा। श्रद्धा शब्द विश्वास है, कही सुदृढ़ निश्चय, ये पूरा विश्वास हो कि इसी से मेरा कल्याण है, और इसमें जो कहा जा रहा है वो कार्य करने से मेरा कल्याण है। तो जैसे हम लोग रोज, ये भक्तों की एक अनुकंपा है हमारे ऊपर, श्री प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। उनको क्या जरूरत थी इतनी वृद्ध आयु में इतने सारे शास्त्रों का, इतना तात्पर्य लिखने का? वो बैठ जाते वृंदावन, भजन करते अपना, अपने लाइफ को सक्सेस करने के लिए, है ना, और भी सोचते कि ये टाइम है मैं मैं अभी 16 माला कर रहा हूँ, इससे बेहतर है मैं भी हरिदास ठाकुर की तरह 3 लाख बार जप करूंगा, मुझे भी नाम आचार्य बोला जाएगा। क्या जरूरत है मैं इतना सारा प्रचार करूँ, कभी वहां जाते थे कभी वहां जाते थे, अमेरिका में एक एक व्यक्ति के चरणों पर गिर के बोलते थे कि आपको मैं आपकी सेवा करूंगा, बर्तन धोते थे जूठे उन मवालियों के, और फिर उनके लिए प्रसाद बनाते थे कि आप प्रसाद खाओ, प्रसाद के लिए वो लोग आते थे, उनको तो पता ही नहीं था दिव्य ज्ञान के विषय में। और फिर आके दूसरे दिन क्या बोलते थे, कल जो स्वीट खिलाया था लड्डू खिलाया था वो दोगे, आज वो मिलेगा तो आते हैं वरना नहीं आते। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हाँ आप आ जाओ मिलेगा, आप खाली कथा श्रवण करो। तो वास्तव में जो भक्त आज भी प्रचार करते हैं उनके अपने भी जीवन होते हैं, उनके अपने बहुत सारे मसरूफियात होती हैं, बहुत सारे उनके उनके भी कार्य होते हैं, सेवाएं होती हैं, लेकिन फिर वो हमारे लिए कि हम हमारा कल्याण हो, साधारण जीव जो तड़प रहे हैं जन्म मृत्यु के इसमें आना जाना और इसी जाल में पड़े हुए हैं, जो भगवत भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, उनको भगवान का नाम सुनाना, भगवान की कथा श्रवण कराना तो कितना कितनी अनुकंपा है उनकी। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि वो कितनी हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं और हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। और उनके लिए क्या, वो कभी पूछते हैं, कभी किसी साधु ने कहा जो हम कथा में जाते हैं, वो बोलते हैं हमारे घर पे मेरे घर पे आटा नहीं है, 1 किलो आटा देकर जाओ। कभी नहीं बोलता कि मेरे बच्चों ने फ्रूट्स नहीं, उनको फ्रूट्स में नहीं लाके दे सकता हूँ, दूध नहीं मैं लाके दे सकता हूँ, आप लाके दो। कभी बोलते हैं नहीं, बोलते क्या बोलते हैं कि आप भगवान का भजन करो, आप अपने जीवन को सफल करो, भगवान के पवित्र नाम का जप करो, आपको शास्त्र पर विश्वास रखना है, भगवान के ऊपर विश्वास करना, इसी से आपके जीवन का कल्याण होगा। तो वास्तव में साधु की सेवा यही है कि हम जो वो कहते हैं उन पर हमें अमल करना चाहिए। तो यदि कोई भक्त हमें बताते हैं शास्त्र और हमें श्रद्धा से उनको सुन रहे हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं जैसा कि वो शास्त्र के अनुसार हमें बताते हैं, तो समझो सबसे बड़ी सेवा है ये, और इसी से हमारे जीवन परिवर्तन होगा। वरना भले हम देखते हैं कितने बड़े बड़े समारोह होते हैं, सब भागवत सप्ताह होते हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं, उनमें से किसी एक का ही जीवन परिवर्तित होता है, क्योंकि लोग जाते हैं केवल इस भाव से कि सुनूंगा कान से, करने के विषय में कोई नहीं सोचता कि मैं उसके आदेश का पालन करूंगा, मैं अपने इस जीवन को सफल करूंगा। परंतु जिसके विषय में आज हम पढ़ रहे हैं वो ऐसे ऐसे श्रोता नहीं थे, वो ऐसे श्रोता थे जिन्होंने अपने जीवन को उन 4 महीनों में जो उन्होंने सुना उसके ऊपर अपना पूरा जीवन गुजारा। और ये बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी, कहते हैं यदि हम ऋषियों से या जो भी साधु जन शुद्ध भक्तों से सुने, तो यदि हम सही तरह से सुन रहे हैं तो प्रत्यक्ष हमारे जीवन परिवर्तित होता दिखाई देना चाहिए, ऐसा पता होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि इसने भौतिक आसक्ति को छोड़कर भगवान के प्रेम को स्वीकार किया है, इसलिए इसका जीवन परिवर्तित हो रहा है। यदि हमारे वही कार्यकलाप है, आहार निद्रा वही मैथुन की ओर, बस खाली सुन रहे हैं लेकिन जीवन परिवर्तित नहीं हो रहा, फिर उसका कोई लाभ नहीं हुआ। भले ही भगवान ने कह दिया नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि अगर थोड़ी सी भी प्रगति धर्म में आपने कर ली तो वो जाया नहीं होगी, लेकिन कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, थोड़ा 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 हमें अपने जीवन में चेंजिंग तो लानी पड़ेगी ना। तो श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि यद्यपि वे अभी तक 5 वर्ष, मात्र 5 वर्ष के, और उनके दिल में इतना उतर गया वो ज्ञान कि उन्होंने अपने जीवन में तेजी से बहुत परिवर्तन उनके जीवन में आया। वास्तव में पता है क्या है, वजह क्या है परिवर्तन ना आने की, लोग श्रवण तो करते हैं परंतु दीक्षा नहीं लेते, है ना। फिर क्या होता है, दीक्षा अगर नहीं होती है तो फिर हम वो चले जाते हैं तो हमारा संबंध, जैसे उस समय के लिए तो हमारा संबंध हो जाता है लेकिन समय के बाद हम उन्हें भूल जाते हैं कि किसने क्या बोला, लेकिन अपने गुरु की कही हुई बात को हम कभी नहीं भूलते, है ना। गुरु ने मुझे कहा है, फिर जब हम किसी के भी द्वारा सुन रहे हैं, जैसे आप लोग किसी के भी द्वारा सुन रहे हो, लेकिन आपको पता है ये श्रील प्रभुपाद जी के वाक्य हैं, और श्रील प्रभुपाद जी मेरी परंपरा से हैं, और मेरी परंपरा से हैं तो यानी कि मेरे गुरु गुरु महाराज ने भी वही आदेश दिया है जो श्रील प्रभुपाद ने दिया, क्योंकि परंपरा में कभी भी आदेश चेंज नहीं होता है, सिर्फ व्यक्ति चेंज हो रहा होता है। तो उसने वही आदेश दिया है, तो आज जो मैं सुन रहा हूँ मेरे गुरु महाराज का वाक्य है, और मेरे गुरु महाराज का वाक्य है, इसे मुझे उसको फॉलो करना है। तो जब हमारा लिंक बनता है ना दीक्षा के द्वारा, फिर उस शिक्षा का वास्तविक परिवर्तन जो प्रमाण होता है ना, वास्तविक प्रत्यक्ष दिखने लगता है दीक्षा के बाद, क्योंकि स्नेह होता है ना अपने गुरु से, और इस बात का भी हमें पता होता है कि मुझे अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करना है, एनी हाउ प्रसन्न करना, वरना तो क्या होता है, हम सुनते हैं उस टाइम पर हमें अच्छा लग रहा है और अपने जीवन में थोड़ा सा उसको उतारते हैं, चार माला करना शुरू करूंगी और उसके बाद अब भगवान को भोग लगाए बगैर नहीं खाऊंगी, फिर धीरे धीरे क्या होता है, विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं, मनुष्य की आदत है, अच्छाई जिसने हमसे की होगी वो हम जल्दी भूल जाते हैं, और किसी ने अगर बुरा कहा होगा कहीं पर बचपन में तो वो याद रहेगा अभी तक, क्योंकि बुराई हजम नहीं होती है, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं हम, अच्छाइयां जितनी भी कोई करता है तो अब क्योंकि जो संत होते हैं वो अच्छाई उनके पास कुछ नहीं होता, लेने के लिए नहीं आते, साधु देने के लिए आते हैं, हम दे कर जब हम कुछ देते हैं ना किसी को, वो हम भूल नहीं सकते, मैंने दिया उसको, मैंने दिया, भले कुछ भी, हमारे घर पे आई थी, मैंने उसके पास कुछ नहीं था, मैंने उसको खाने के लिए दिया, मतलब 2 साल के बाद 10 साल के बाद दिया, लेकिन किस किस से लिया है मैंने वो मैं भूल जाती हूँ, है ना। इस तो साधु जन क्यों कि जो कुछ भी उनके पास है वो हमें केवल देने के लिए आते हैं और हम लेकर हमेशा भूल जाते हैं। तो आज हमें आगे बताएंगे नारद मुनि कि किस तरह से उन भक्तों ने उनके जीवन को कल्याण किया, और क्रमशः श्री प्रभा जी बोलते हैं कि नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह क्रमशः कैसे घटा, इस अध्याय में हमें ये बताया जाएगा। आगे श्लोक नंबर 6 कृपया मेरे साथ पढ़िए। एकात्मजामे जननी योषिन मूढ़ा च किंकरी मय्यात्मजीनन्यगतौ चक्रस्नेहानुबंधनम्। एकात्मजामे जननी योषिन्मूढ़ा 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 च किंकरी मय्यात्मजैनन्यगतौ चक्रस्नेहानुबंधनम्। शब्दों का अर्थ, एक आत्मजा अर्थात केवल एक संतान वाली मेरा जननी माता ने योषित मूढ़ा, योषित का मतलब होता है एक स्त्री जाति, और मूढ़ा अर्थात दूसरी मूर्ख, और उसके साथ किंकरी दासी, मई आत्मजे अनन्य गतो, मई मतलब मुझ, आत्मजे मतलब संतान में अनन्य गतो, जिसकी रक्षा का कोई अन्य साधन न हो, चक्र अर्थात किया स्नेहन से स्नेहानुबंधनम यानी कि प्रेम के बंधन में बांधना। अनुवाद, मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र था, वह न केवल भोले वाली स्त्री थी अभी तो दासी भी थी, चूंकि मैं उसकी एकमात्र संतान था अतः उसकी रक्षा का कोई अन्य साधन नहीं था, अतएव उसने मुझे अपने स्नेह पाश में बांध रखा था। यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कि मेरी माँ के पास और कोई सहारा नहीं था, भले ही मुझे ऋषियों ने बताया था और वो ज्ञान मेरे हृदय के अंदर इतना गहराई से उतर गया था और मुझे अपने जीवन का लक्ष्य भी पता था कि मुझे अपने जीवन को भगवान को समर्पित करना है, भगवान के नाम को जप करने में, भगवान की सेवा करने में। लेकिन अब मैं क्या करता, नियत कर्म मेरी माता का, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं था, एक आत्मजा, इकलौता बेटा था मेरी जननी एक मेरी माता थी और किसी को कोई दूसरी संतान नहीं थी। और दूसरा उसके अंदर तीन अवगुण थे, क्या, एक तो स्त्री थी, अब माता है तो स्त्री होगी, योशिन फिर भी लिखा है स्त्री थी, और क्योंकि स्त्री थी इसलिए मूर्ख थी, मूर्ख इसलिए भी थी क्योंकि वो जंगल में रहते थे, ज्यादा एजुकेशन वगैरह, अब जंगल में उसकी क्या एजुकेशन मिली होगी, क्या उसको पता होगा, कुछ भी तो नहीं जानती होगी, बच्चा एक ही बच्चा है उसका, तो उसी की है ना पालन पोषण में अपने जीवन को बिताती थी। और दूसरा दासी थी, दासी को क्या होता है, अब कोई महारानी अगर कहीं की होती तो उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, लेकिन दासी थी, कभी भी उसको है ना जहाँ पर वो सेवा करती थी कभी भी ऐसा हो सकता है कि उसको निकाल देते, कहाँ कोई उसका सहारा नहीं होता, इसलिए उस अब वो एक स्त्री थी, दासी थी, मूर्ख थी। और मैयात्मजेनन्यगत, क्योंकि मैं ही इकलौता उनका पुत्र था, तो अनन्यगत, जिसकी रक्षा का कोई अनन्य साधन नहीं था, बस वो सोचती थी कि ये मेरा बेटा है बड़ा होगा, ये मेरी रक्षा करेगा, इसीलिए मुझे उसने क्या किया था, स्नेह बंध, स्नेह अनुबंधनम, एक बंधन होता है अनुबंधन, मतलब इतना प्रेम करती थी मुझसे, इतना प्रेम करती थी कि वो बस सोचती थी कि मेरे जीवन में इसके अतिरिक्त तो और कोई है ही नहीं, बहुत प्यार करती थी अपने बच्चे से क्योंकि मैं इकलौता बेटा था। आगे कहते हैं, सा संत तंत्रता न कल्पासीत् योगक्षेमं मे ममेच्छति, ईशस्य हि वशे लोको योषादारु मयि यथा, सा स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का मतलब होता है आजादी, और सा का मतलब होता है वह अस्वतंत्रता, स अस्वतंत्रता, इससे पढ़ेंगे उसको, सा स्वतंत्रता न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति, ईशस्य हि वशे लोको योषादारु मयि यथा, सा स्वतंत्रता न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति, ईशस्य हि वशे लोको योषादारु मयि यथा, सा स्वतंत्रता न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति, ईशस्य हि वशे लोको योषादारु मयि यथा, सा स्वतंत्रता न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति, ईशस्य हि वशे लोको योषादारु मयि यथा, सा स्वतंत्रता न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति, ईशस्य हि वशे लोको योषादारु मयि यथा, सा स्वतंत्रता न कल्पासीत् योगक्षेमं ममेच्छति, ईशस्य हि वशे लोको योषादारु मयि यथा। शब्दों का अर्थ, सा अस्वतंत्रता, सा मतलब वह, अस्वतंत्रता मतलब आश्रित थी, वो स्वतंत्र नहीं थी, आश्रित थी, न कल्पा, न मतलब नहीं, कल्पा मतलब समर्थ भी नहीं थी, आसीत वो समर्थ भी नहीं थी, स्वतंत्र भी नहीं थी, आश्रित थी, योगक्षेमम ममच्छत ममेच्छति, योग मतलब लालन पालन मम मन मेरा, इच्छति यद्यपि उत्सुक, और ईशस्य यानी ही, ईशस्य का मतलब होता है ईश्वर का, ही वशे क्योंकि, ही मतलब क्योंकि, वशे मतलब वश में, लोको योषा दारुमयी यथा, लोको मतलब प्रत्येक व्यक्ति, योषा मतलब योषा का मतलब होता है गुड़िया, डोल होती है ना, दारुमयी काट की बनी हुई यथा, जिस तरह, अनुवाद, वह मेरा लालन पालन अच्छी तरह करना चाहती थी लेकिन पराश्रित होने के कारण वह मेरे लिए कुछ भी कर नहीं चाहती थी। यह संसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, अतः प्रत्येक व्यक्ति कठपुतली नाचने वाले के हाथ में काठ की गुड़िया के समान है। यानी कि नारद मुनि यहाँ पर बता रहे हैं कि वो बहुत प्रेम करती थी मुझसे, योगक्षेम ममेच्छति, उसका बहुत दिल करता था कि जो मेरे पास है वो उसकी रक्षा करे और जो मेरे पास नहीं है वो मुझे प्रोवाइड करे। मेरी अगर कोई किस चीज़ के लिए ख्वाहिश होती थी तो उसका बहुत दिल करता था, हृदय से उसकी इच्छा होती थी कि मुझे लेकर दे, मगर क्या करती, सा स्वतंत्रता न कल्पा से, वो सब उस स्वतंत्र नहीं थी, आश्रित थी बेचारी, गरीब थी और अपने मालिक जिसकी दासी थी उस पर आश्रित थी, उसके अंदर कोई समर्थ नहीं था कि वो लेकर रहती, उसका बहुत दिल करता था लेकिन क्या करती, ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुमयी यथा, जिस तरह काट की कठपुतली अपने जो खिलाड़ी होता है ना उसके आदेश के अनुसार कार्य करती है, उसी तरह लोको ईशस ही वशे लोको, ये सारा संसार जो है वो भगवान के आदेश अनुसार परमेश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, और जिस तरह कठपुतली जो है नचाने वाले के हाथ में गुड़िया जो जिस तरह से कार्य करती है, तो संपूर्ण सृष्टि उस ईश्वर के हाथ में चली हुई, वो अपनी मर्जी से जैसे उसको चाहता है वैसे चलाता है। वास्तव में भक्तों यहाँ पर लिख दिया नारद ने, लेकिन ये ईश्वर हमारे साथ कोई ऐसा नहीं करता है कि भाई उस किसी का पक्षपात करता हो या किसी किसी के साथ द्वेष करता हो, किसी को कम देता है किसी को ज्यादा देता है। वास्तव में भाग्य जीव अपना खुद लिखता है ना, जीव अपने जो कर्म करता है उसके अनुसार ही उसको सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी जीव कहता है आने के बाद, देखो मेरे साथ भगवान ने ऐसा किया, चलो ठीक है भगवान की जैसी मर्जी, हम तो कठपुतली हैं उनके इशारों पर नाचते हैं, अगर उनके इशारों पर नाचते हो तो उनके आदेश का पालन क्यों नहीं करते। भगवान ने कह दिया कि यदि मेरी भक्ति करोगे तो शुचिनाम श्रीमताम गे है योगो भ्रष्टो विजायते, अगर पूरी भक्ति नहीं भी करोगे तो कभी गरीब नहीं होगे। आज हम गरीब हैं, आज हम दुखी हैं, तो इसका कारण ये है कि भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया। अब उस जन्म में पालन नहीं किया तो आज भोग रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि अब भगवान की जैसी इच्छा। पहले आज भी अगर हम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करेंगे जो भगवान ने हमें रूल्स एंड रेगुलेशन श्रीमद् भगवद गीता में शास्त्रों में बताए गए हैं उनके अनुसार जीवन नहीं बिताएंगे, आज हम अपनी इच्छा से, अब जैसे बच्चा होता है एक दिन अपराध करता है और उस दिन है ना मतलब एक कोई अपराध करता है, उस वक्त सोचता नहीं है कि मैं अपराध कर रहा हूँ तो मेरी मम्मी मुझे बाद में कोई भी पनिशमेंट दे सकती है, लेकिन फिर बाद में जब पनिशमेंट मिलती है तो क्या सोचता है, देखो मेरी मम्मी कितनी क्रूर है मुझे, तुमने उस समय क्यों नहीं सोचा जब तुम अपराध कर रहे थे। भगवान हमारे साथ माता पिता का स्नेह करता है, पहले बताता है कि देखो ये चीज करनी चाहिए ये चीज नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम बिगड़ी हुई संतान है, हम उनके आदेश का पालन नहीं करते तो जाहिर सी बात है कल भुगतना पड़ता है। और उस समय क्या बोलते हैं कि भगवान ने देखो मेरे साथ ऐसा किया, कठपुतली की तरह हम उसके इशारों पे नाच रहे हैं, जैसा चाहता है जैसी मेरी हमारी इच्छा होती है, हमारी इच्छा को पूर्ण नहीं करता। वास्तव में आपकी इच्छा को ही पूर्ण करता है, क्योंकि आपने जिस समय आदेश का पालन नहीं किया उस समय आपकी इच्छा होती है कि मुझे इसका आदेश ना पालन करने का दंड मिले, क्योंकि यदि आपकी इच्छा हो कि आपको दंड नहीं मिले तो आप अपराध करते ही क्यों, है ना। हर अपराधी जानता है कि अपराध का दंड मिलेगा, लेकिन या तो वो जो गवर्नमेंट होती है उसको असमर्थ मानता है कि मुझे मैं बच जाऊंगा शायद, या फिर भगवान को असमर्थ जानता है कि शायद मैं बच जाऊंगा उसकी नजरों से, लेकिन जीव भले ही इस संसार की अदालत से बच जाए, भगवान की अदालत से कभी नहीं बचता, क्योंकि संसार की अदालत के पास वो दृष्टि नहीं है कि वो हर जगह पर हर अपराधी को देखे, लेकिन ये भगवान जो है वो हमारे हृदय में है, कहाँ जाएंगे उससे बचकर। अब जाहिर सी बात है, उसके आदेशों का पालन, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं करते, कभी कभी बच जाते हैं, लेकिन भगवान ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं उनका अगर पालन नहीं करे तो नहीं बच सकते, फिर हमें उसको भुगतना पड़ता है, नेक्स्ट जन्म उसी के लिए होता है। तो हमें सावधान रहकर अपने वर्तमान जन्म को बहुत सावधानी के साथ बिताना है, ताकि हमें नेक्स्ट जन्म में कुछ ऐसा ना मिले जिसके लिए हमें दुखी होना पड़े। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि मेरी माता की बहुत इच्छा थी कि मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा करे, मेरा अच्छे से लालन पालन करे, मगर क्योंकि वो असमर्थ थी, स्वतंत्र नहीं थी, अधीन थी, और इसलिए वो कर नहीं पाती थी। आगे श्लोक नंबर 8। अहम च तत् ब्रह्म कुले उषिवांस्तद् उपेक्षया दिग्देशकालव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायन अहं च तद्ब्रह्मकुले उषिवांस्तद् उपेक्षया दिग्देशकालव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायन अहं च तत् ब्रह्मकुले उषिवांस्तद् उपेक्षया दिग्देशकालव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायन अहं च तत् ब्रह्मकुले उषिवांस्तद् उपेक्षया दिग्देशकालव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायन। शब्दों का अर्थ, अहम् च तद् ब्रह्मकुले उषिवांस्तद् उपेक्षया। अहम् मतलब मैं, च भी तद् उस ब्रह्मकुले ब्राह्मणों के स्कूल में, ओषिवान यानी रहता था, तत् उसका उपेक्षया आश्रित, दिग्देश काला व्युत्पन्न, दिग्देश मतलब दिशा तथा देश, काल यानी समय, अव्युत्पन्न यानी अनुभव विहीन, बालक पंचहायन, बालक मतलब मात्र बालक था, पंच पांच, हायन मना वर्ष का। अनुवाद, जब मैं केवल 5 वर्ष का था, बालक था, तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में मैं रहता था, मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न देशों का कोई अनुभव नहीं था, मैं छोटा सा था, जाहिर सी बात है छोटा सा था, और वहाँ पर हमारे जहाँ जंगल था वहाँ पर एक ब्राह्मणों का स्कूल भी था, मैं उस स्कूल में रहता था, जाता था शिक्षा लेने के लिए। देखो यहाँ से हमें पता चलता है कि उस समय भी शिक्षा दी जाती थी, ब्रह्मचर्य का जीवन बनता है शिक्षा हासिल करने के लिए। जीवन ब्रह्मचर्य में क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक कर्तव्य होता है कि आप गुरु करो और गुरु से शिक्षा लो, बस ये जीवन होता है ब्रह्मचर्य का, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं। जब तक आप ब्रह्मचर्य अवस्था में शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेते, तब तक आपको गृहस्थ में प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई शास्त्र इस बात का आदेश नहीं देता है कि जब तक आप गुरु से दीक्षा नहीं ले लेते तब तक आप गृहस्थ बनो। जब तक आप ब्रह्मचर्य में हो आपको गुरु महाराज से दीक्षा लेनी है, और दीक्षा लेने के बाद रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, और उसके बाद जब आप 5 वर्ष से लेकर 25 साल तक जब आप इस आदेशों को पालन करके आपको जीवन का लक्ष्य पता हो जाएगा ना, उसके बाद जीव जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है, वरना गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके आप इस पवित्र गृहस्थ आश्रम को भी कुत्ते बिल्लियों की तरह सेक्सलेस बना दोगे खाली, कि ये जीवन मुझे मिला ही, गृहस्थ हूँ मैं, शादी की है, लेकिन इसलिए नहीं होता है। हमें हमारे हमारी संतान को आज हम ब्रह्मचर्य में शास्त्रों का अध्ययन नहीं कराते तो इनको पता ही नहीं होता। बता देते भाई आपको चेला बनना है, चेला शादी करने से पहले कैसे भी करके आपको चेला बन जाना है, गुरु करना है। पता नहीं है गुरु ने कोई आदेश, पे बाद में ना चेला गुरु को जानता है ना गुरु चेले को जानता है, ना कोई आदेश का पालन होता है, बस ठप्पा लगा। क्यों अपने आप को इतना मूर्ख बना रहे, अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं, हम ऐसे ऐसा कर रहे हैं जिसको हम खुद भी अपनी बुद्धि से स्वीकार नहीं कर रहे होते। तो वास्तव में ये ब्रह्मचर्य आश्रम में हमें अवश्य इतना अपनी संतान को सिखाना चाहिए और दीक्षा दिलानी चाहिए ताकि वो 16 माला जप करेगा, रोज 4 नियम का पालन करेगा, रोज को फॉलो करेगा, तब वो अपनी मैरिज लाइफ, अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे तरीके से गुजार सकेगा। जब तक वो इस योग्य नहीं होता तब तक संतान की शादी नहीं करानी चाहिए। तो यहाँ पर नारद जी बोलते कि मैं छोटा 5 साल का था, मैं पाठशाला में जाता था और अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था, जो मेरी माता मुझसे प्रेम करती थी और तो कोई था नहीं मेरा, और जहाँ वो जाएगी तो उधर ही जाऊंगा, तो मेरी माता तो कहीं और जाती नहीं थी, तो मैं और किसी भी देश का जगह का मुझे कोई अनुभव नहीं था, मेरी जिंदगी इसी एक जंगल तक सीमित थी। आगे कहते हैं श्लोक नंबर 9 मेरे साथ पढ़िए। एकदा निर्गतं गेहात् दुहन्तीं निशिकाम्यगां पथि सर्पोदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। एकदा निर्गतं गेहात् दुहन्तीं निशिकां पथि सर्पोदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। एकदा निर्गतं गेहात् दुहन्तीं निशिकां पथि सर्पोदशत् कृपणं कालचोदितः। एकदा निर्गतं गेहात् दुहन्तीं निशिकां पथि सर्पोदशत्पदास्पृष्टः कृपणं कालचोदितः। एकदा निर्गतं गेहात् दुहन्तीं निशिकां पथि सर्पोदशत्पदास्पृष्टः कृपणं कालचोदितम्। शब्दकार एकदा निर्गतं गेहात, एकदा एक बार, निर्गतम चले जाने पर, गेहात घर से, दुहंतीम दोहने से, निशि रात्रि में गाय को, पथि रास्ते में। फिर जब घर से हम जा रहे थे एक बार रास्ते में एक गाय को दो रही थी, तो उस समय सर्पो दशत पदा स्पृष्टा, सर्पो मतलब सर्प में, अदशत दस लिया, पदा पाव में, स्पृष्टः इस प्रकार कटी गई, कृपणाम कालचोदिता, कृपणाम मतलब बेचारी स्त्री, कालचोदिता, कालचोदिता का मतलब होता है परम काल के वशीभूत होकर। अनुवाद, एक बार जब मेरी बेचारी माँ रात्रि के समय गाय दोहने जा रही थी तो परम काल के से प्रेरित हुए एक सर्प ने मेरी माता के पाँव में दस दिया। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय हो। एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींचने की यह विधि है। बेचारा बालक अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था तो भी उसकी माता को परम इच्छा के फलस्वरूप इस संसार से उठा लिया गया, जिससे वह बालक पूर्णतः भगवान की कृपा पर आश्रित हो जाए। शिल प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर बता रहे हैं, क्योंकि वो सत्यनिष्ठ था और उसे अपने जीवन को भगवान की भक्ति में लगाना था, परंतु वो अपनी माता के स्नेह पाश में बंधा हुआ था। जैसे हमने पढ़ा ना, चक्रे स्नेहानुबंधनम, उसके जीवन का एक ही बंधन था उसकी माता का प्रेम, और जिसके कारण वो भगवान की भक्ति में अपने आप को नहीं लगा पा रहा था। तो यहाँ बश्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींचने का यह विधि है कि भगवान जो है वो आपके जीवन में जो बंधन होता है, अगर आप ऐसे नहीं, अगर आपके हृदय में भगवान की ओर जाने का सच्चा भाव होता है तो भगवान वो बंधन खुद ही काट देते हैं। ऐसा नहीं कि आपके रिश्तेदारों को मार देंगे, ऐसा नहीं है, वो नारद मुनि थे, हम हमारे अंदर इतनी सत्यता है भी नहीं। लेकिन जो हमारे भजन में जो कठिनाई होती है, जो रुकावटी होती है, भगवान उसको दूर कर देते हैं ताकि हम पूरी तरह से समर्पित कर सके। तो यहाँ पर बोला एक सत्यनिष्ठ आत्मा को ईश्वर के पास खींचने की यह विधि है। बेचारा बालक अपनी स्नेहमयी माता की देखभाल में रह रहा था, तो भी उसकी माता को परम इच्छा के स्वरूप इस संसार से उठा लिया गया। यानी फिर भगवान ने, जो कि एक सांप के हृदय में भी बैठे हुए थे, और शाम को ये प्रेरणा दी कि तुम डसो और इसको मार डालो, ताकि मेरे भक्त के और मेरे बीच के प्रेम में किसी और की बाधा ना हो और वो अपने जीवन को मेरे लिए समर्पित करे, जिससे वह बालक भगवान की कृपा पर पूर्णतया आश्रित हो जाए। श्लोक नंबर 10 कृपया मेरे साथ पढ़िए। तदा तदा हम ईशस्य भक्त तानाम शमभीप्सत अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां तदा तत् अहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सत अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां तदा तत् अहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सत अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां तदा तत् अहमीशस्य भक्त तानाम शमभीप्सत अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तरां। शब्दोकात तदा तद अहम ईशस्य, तदा मना उस समय, तद उस अहम मैंने, ईशस्य ईश्वर के, भक्तानाम शमभीप्सत भक्तानाम मतलब भक्तों की क्षमा दया अभीप्सता चाहते हुए, फिर मैंने क्या सोचा कि भगवान के भक्त मुझ पर दया करेंगे, अनुग्रहम मन्यमानः, अनुग्रहम विशेष आशीष मन्यमानम, इस प्रकार सोचता हुआ मन्यमानम, प्रतिष्ठम दिशम उत्तरम, प्रतिष्ठम प्रस्थान किया, दिशम उत्तरम यानी उत्तर दिशा की ओर, अनुवाद मैंने इससे भगवान की विशेष कृपा मानी, क्योंकि वे अपने भक्तों का भला चाहने वाले हैं, और इस प्रकार सोचता हुआ मैं उत्तर की ओर चल पड़ा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवान के विश्वस्त भक्त पग पग को भगवान का वरदायक आदेश समझते हैं, जिसे लौकिक दृष्टि से विषम्य या कठिन क्षण समझा जाता है, उसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। लौकिक समृद्ध एक प्रकार का भौतिक ज्वर है, किंतु भगवान के अनुग्रह से इस ज्वर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है और पद पद पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता है। संसारी लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। श्री प्रभुपाद की जय हो। एक बच्चा जिसकी उम्र 5 साल और माता के प्रेम के ऊपर पूरी तरह निर्भर, उसका संसार में कोई नहीं, और एक दिन वो माता मर जाती है तो उस समय हम सोच सकते हैं कि उस बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी, कि वो क्या सोचेगा, कौन मेरा ख्याल रखेगा, कौन मेरी देखभाल करेगा, कौन मुझे खाना खिलाएगा, कौन मुझसे स्नेह करेगा, कौन मुझसे प्यार करेगा, कौन मुझे लोरी सुनाएगा, कैसे जीऊंगा। लेकिन ये एक साधारण व्यक्ति की सोच होती है। एक भक्त ने क्या सोचा उस समय, यहाँ पर नारद मुनि के वचन से हम जान रहे हैं, तदा तद अहम ईशस्य भक्तानां क्षमापेक्षता। मैंने सोचा कि ये भगवान की कृपा है, विशेष कृपा है मेरे ऊपर, वो मुझे अपनी ओर लेकर जाना चाहते हैं, इसलिए संसार के समस्त बंधनों को अभी से तोड़ो। हम क्या सोचते हैं, हम हमेशा सोचेंगे नहीं, अभी भगवान मुझे सब चाहिए और साथ में आप चाहिए हो। लेकिन ये तो भगवान की कृपा है, इसका मतलब ये नहीं कि भक्तों को सोचना चाहिए कि नहीं हमारे सारे रिश्तेदार नहीं हो। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाता है, भगवान ना करे, तो भी हमें यही सोचना चाहिए कि कृष्ण की कृपा है ये। इसमें यहाँ पर जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि जिसे लौकिक दृष्टि से विषम या कठिन क्षण समझा जाता है, उसे भगवान की विशेष कृपा के रूप में स्वीकार किया जाता है। अब संसार में जो समय, जो जो कोई ऐसा हमारे ऊपर वक्त आता है जो बहुत विषम समझा जाता है, बहुत दुखदायक समझा जाता है, लेकिन भगवान के भक्त जो है उसे विशेष कृपा मानते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भगवान के भक्त जो होते हैं वो कठोर होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका हृदय कठोर था नारद मुनि का, वो सोचते थे अच्छा वो मेरी माँ मर गई, अब मैं आराम से भक्ति करूंगा। वास्तविकता जानते हैं भक्त, वो कोई ऐसे साधारण व्यक्ति नहीं था, उसने गुरु किया हुआ था और वो जानता था कि अगर कोई संतान अपनी माता की सबसे बड़ी कोई अगर सेवा कर सकते, कितने साल सेवा करता वो अपनी बूढ़ी माता की। अभी तो वो छोटा था, अभी वो बूढ़ी हो गई थी, जब तक बड़ा करके पालते 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 उसकी जीवन गुजर जाता, वो अगर भक्ति नहीं करता तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि वो अपनी माता को मुक्ति दे सकता था? सरासर नहीं। लेकिन आज जब उसने भक्ति भगवान की स्वीकार कर ली, तो एक भक्त ये जानता है कि अगर एक व्यक्ति किसी खानदान का भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान की भक्ति स्वीकार करता है, तो उसकी 21 पीढ़ियां ऊपर की और 21 पीढ़ियां नीचे की सब भगवान के पास चले जाती हैं, भले उन्होंने भक्ति की हो या ना की हो। तो नारद मुनि जानते थे कि मेरी माता का कल्याण वास्तव में इस संसार में जब तक वो रहती तब तक मैं उसकी सेवा करता था उसमें नहीं होता, बल्कि वास्तविक तो मैं उनका कल्याण तब करूंगा जब मैं भगवान की भक्ति करूंगा, वास्तविक तो उसकी मुक्ति तब होगी जब मैं भगवान की शरण में जाकर भगवान से प्रार्थना करूंगा। मैं तो उनके लिए कुछ नहीं कर सकता था अगर भगवान की सहायता नहीं मिलती मुझे। तो यहाँ पर एक भक्त के सोचने में और सांसारी लोग के सोचने में कितना अंतर है। वास्तव में जीव का अगर अपने माता पिता का कल्याण कर सकता है कोई संतान, तो उसका मन ये कल्याण नहीं होता है कि उसको आटा ला कर दे या फिर चावल ला कर दे या फिर टेबलेट्स ला कर दे। इसका मतलब ये नहीं कि ये हमारी जिम्मेदारियां नहीं, लेकिन वास्तविक कल्याण इससे नहीं होगा। उसके उसके नसीब का जितना उसके भाग्य का होगा वो उसको मिलेगा, लेकिन वास्तविक कल्याण इससे होगा जब आप भक्ति करोगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करोगे, भगवान की सेवा करोगे। तो जिसकी संतान सेवा करती है तो उसके माता पिता को पूरा पुण्य मिलता है, और अगर संतान अगर मतलब गलत रास्ते पे जाती है तो उसकी सजा भी माता पिता को मिलती है, क्योंकि उनकी गलती है ना एक तरह से कि उन्होंने नहीं सीखा। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता अपने संतान को संपूर्ण शिक्षा देते हैं जो उनका कर्तव्य होता है, गुरु भी करके देते हैं और फिर ना क्लासेस में लेकर जाते हैं, बताते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य ये है, आपको माला करनी चाहिए, और उसके बावजूद भी यदि बच्चा वो नहीं करता तो फिर माता पिता को भुगतना नहीं पड़ेगा, फिर वो अकेला भुगतेगा। लेकिन अगर माता पिता ने नहीं बताया तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर नारद मुनि जानते हैं कि मेरी माता का कल्याण मैं तभी से कर सकता हूँ जब मैं भगवान की भक्ति करूँ। तो ये उन्होंने ये जो इनकी माता की मृत्यु हो गई उसको भी क्या माना कि भगवान का मेरे ऊपर विशेष कृपा हुई है, भगवान के विश्वस्त भक्त पग पग पर भगवान का वरदायक आदेश समझते हैं कि जो भी कुछ मिलता है एक एक क्षण में मुझे जो भी प्राप्त होता है वो भगवान की कृपा है, भले कितना ही कठिन समय होता है फिर भी वो क्या बोलता है, थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज इट इज। भले ही कुछ भी हो जाता है उसे उसके घर से निकाल दिया जाता है। उसके अपने शिष्य उसको छोड़ देते हैं या फिर कुछ भी हो जाता है तो भी क्या हमेशा उसके हमारे गुरु महाराज का बहुत ज्वलंत आदर्श है हमारे पास। वो सदैव कहते थे थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज दिस। कभी ऑपरेशन होता था तो भी यही बोलते थे, कभी अना कुछ भी उनके जीवन में घटना ऐसी घटती थी तो कभी भी भगवान से कंप्लेन नहीं करते थे। वास्तव में भक्त को कभी भी भगवान से कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमेशा भगवान का थैंक्स कहना चाहिए और हमेशा भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर एक लाइन बताई है कि लौकिक समृद्धि एक प्रकार से भौतिक जोर है, यानी कि अगर संसार में हमें समृद्धि प्राप्त होती है, यश प्राप्त होता है, मित्र प्राप्त होते हैं, रिश्तेदार प्राप्त होते हैं या फिर जो भी भौतिक वस्तुएं ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होंगी तो एक तरह से भौतिक जोर है। क्यों? क्योंकि वही पास में फंसेगे, जो हमारे पास होगा उसी की ओर हमारी आसक्ति होगी, किंतु भगवान के अनुग्रह से इस जोर का तापमान धीरे धीरे गिरता जाता है और पद पद पर आध्यात्मिक स्वास्थ्य लाभ होता है। यानी कि फिर क्या होता है, भगवान की कृपा करते हैं तो ये भौतिक जो आसक्ति है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है और फिर हम आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करते हैं। संसारी लोग इसका गलत मतलब उठाते कि भगवान की भक्ति की, देखो ये भगवान की भक्ति है, फिर इसके घर में देखो डेथ हो गई या इसके बच्चे को ये हो गया या फिर ऐसा भगवान की भक्ति करने के बाद ये करने, मतलब जो भी बुरा होता है तो संसारी लोग है ना उसको अपोजिट वे से लेते हैं। लेकिन भगवान के भक्त जानते हैं कि भगवान कुछ भी करेंगे वो मेरे भले के लिए ही होगा, भगवान कभी मेरा बुरा नहीं करेंगे। इसी को श्रद्धा कहते हैं, इसी को विश्वास कहते हैं और इसी का आज नारद मुनि प्राकट्य करते हैं कि एकमात्र उनकी माँ, 5 साल का बच्चा कितना होता है और उसकी माता की मृत्यु हो गई और वो क्या सोचता है, भगवान मेरे ऊपर कृपा ही की है ना, अब मैं आसानी से आपकी भक्ति करूंगा और इसी से अपनी माता का उद्धार भी हो सकेगा। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण।